हरे कृष्णा। तो आज के इस संध्या जागृति कार्यक्रम में 27 जुलाई 2010 के आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। शास्त्र में कहा गया है, पदम पदम यत विपदम नदेशाम। विपदा मतलब संकट, कष्ट। तो आप लोग इधर बैठे ना, खाली जगह भौतिक जीवन ऐसा है कि इसमें कब क्या होगा कोई बोल नहीं सकता है, किस वक्त क्या होगा इसका कोई अंदाजा लगा नहीं सकता है। 26 जनवरी 2001 के पहले रात को गुजरात में बहुत लोग आराम से सो गए, उसमें से कई करोड़पति थे, फिर लखपति थे। गुजरात बहुत समृद्ध राज्य है, वैसे ज़्यादा गरीब लोग नहीं महाराष्ट्र में। जब सवेरे उठे भी नहीं थे तो कुछ लोग नींद में ही चले गए, कुछ लोग उठ के जग के चले गए क्योंकि भूकंप हो चुका था सुबह 4:12 पर, और कई सैकड़ों लोग जमीन के अंदर चले गए। उनकी सारी बिल्डिंग, तीन तीन चार चार मंजिल की बिल्डिंग जो थी उस जमीन के अंदर चले गई, और चौथे मंजिल के वो जो टाँकी थी वो जमीन के लेवल पर थी। टाँकी का छत था जो वो आपके नीचे दिखाई पड़ रहा, और जिसमें उसमें से जो बचे वो करोड़पति लोग थे, लेकिन पहने हुए कपड़े जो थे रात को सोते हुए उसको पहने हुए, वो जेब में एक रुपया भी नहीं उनके, सारी उनकी प्रॉपर्टी, सारे शेयर, सारे एग्रीमेंट्स, जितने भी उनके पेपर्स थे वो सब वो कबड़ में रह गए, जो कबड़ जमीन के अंदर चला गया। हाँ, कितनी भयंकर घटना है। हाँ, आप लोग सोच सकते हैं अगर आप उस घटना में होंगे, जीवन भर की जितनी कमाई है वो सब कबड़ में रह गई पेपर के रूप में, वो पेपर सब जमीन के अंदर चले गए, कभी भी नाम मिलेगा वापस। और वैसे ही वो पहने हुए कपड़े को पहनकर, ना दाद दाद ना मंजन किया ना कुछ किया, ऐसे ही फ्री में विदाउट टिकट बैठकर वहाँ से सामाख्याली ट्रेन में आए, ट्रेन से बोरीवली उतरे, और वहाँ से रिक्शा वाले को बोल के बोले जाना है ऐसे, तो रिक्शा वाला पहले कुछ सब पैसे पूछता है, ऐसे बैठ गए और रिश्तेदार के घर में पहुँच गया, बोले पैसा नहीं है अभी ज़रा ला के देते हैं आपसे। ऐसे फ्री में भूखे रात भर बैठ कर मुंबई में अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचे, और जो भी उनको जख्म हुआ उसको फ्री में ट्रीटमेंट करवाने के लिए भक्ति विदार हॉस्पिटल में आए, और कह रहे हम लोग करोड़पति लोग हैं लेकिन हमारे पास अब एक रुपया भी नहीं है। तो ये जीवन का सत्य है, क्या किस समय क्या होगा, जरूरी नहीं कि गरीब आदमी के जीवन में समस्या आती है, करोड़पति के जीवन में भी समस्या आती है। हाँ, किस वक्त क्या होगा, भावना के स्तर पर आघात होगा कि शरीर के स्तर पर होगा कि सामाजिक स्तर पर होगा कि राजकारण राजनीति में होगा। हाँ, आज प्राइम मिनिस्टर है तो कल उसका गवर्नमेंट बर्खास्त हो जाएगा और वो कहीं का नहीं रह जाएगा, कोई पोजीशन नहीं उसको, कोई वैल्यू नहीं। और कभी कभी किसी का बहुत प्रेम है किसी साथ, व्यक्ति मर जाता है किसी बीमारी में और वो पूरा हृदय घायल होकर पागल हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कभी बनी बनाई शादी टूट जाती है। हाँ, क्या नहीं होता जिंदगी में, माँ बहुत बेताबी से बेचा बेटे का इंतजार करती है कि जन्म लेगा, अभी 9 महीने हो चुके हैं, और जन्म लेने के समय माँ और बेटा दोनों मर जाते हैं। कई बार सुना है ना हमने ऐसे, या तो माँ मरती तो बच्चा अकेला बच जाता है, और माँ विधवा थी, इसको पिताजी भी नहीं थे, माँ डिलीवरी में मर जाती है और बच्चा अनाथ होकर कहीं चला जाता है अनाथ आश्रम में, तो कोई आगे पीछे नहीं। हमारे हॉस्पिटल में हमारे फार्मेसी में जो काम करते हैं ना मंजूनाथ शर्माई, उनका भी ऐसा ही है, कोई नहीं उनकी ज़िंदगी में, उनके रिश्तेदार कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, जो रिश्तेदार है केवल भक्त लोग हैं, गुरु भाई गुरु बहन जो है यही उनके माता पिता भाई बंधु सब है। माता पिता बचपन में एक चले गए, दादी ने पाला पोसा, दादी भी गुजर गई, फिर एक मम्मी की माँ मम्मी थी नानी, वो मैंगलोर में ये खबर सुन के कि दादी गुजर गई वो भी वहाँ गुजर गई, वो वहाँ मिलने जा रहा था तो वो उसके पहले ही गुजर गई, तो जब सही रूप से वो आगे से पीछे से अनाथ हो गए। और यहाँ पर जब भी वो भक्त लोगों को नानी के दादी के श्राद्ध का प्रसाद कर रहे थे सब भक्तों को, तो उसके हाथ में कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भी नहीं, ना ना चाचा ना मामा ना मौसा ना कोई नहीं, केवल जब इतने भक्त गुरु भाई थे वो सब मिलकर सबको प्रसाद बांट रहे थे। तो मैंने कहा देखो ये व्यक्ति जो है ये पूर्णता से भक्तों के अधीन हो गया अभी, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं इसके अधीन होने के लिए, चांस भी होगा तो भी है ही नहीं इसको, तो पूर्णता से अभी उसका परिवार समाप्त हो चुका है और वो भक्तों के आश्रय में पूरी तरह से है। उसके भाई, उसकी बहन, उसकी माता पिता सब भक्त जन, कोई है ही नहीं इसमें। तो जीवन की हकीकत है, हम लोग सोचते हैं कि अरे हम लोग तो अच्छे हैं, हमारा तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मृत्यु जब होगा तो सबका ऐसा ही होगा। हाँ, सब रिश्ते नाते, सब पैसे, सब धन, सब पोजीशन, पावर, इन्फ्लुएंस, अधिकार सब छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, कंगाल होकर जाना पड़ेगा, हाथ खाली और जेब भी खाली। वैसे हम लोग यहाँ पर ऊपर आ रहे थे तो खबर आई कि NICU में आग लग गई। हाँ, कुछ ही क्षण की बात है, एकदम धुआं, अंधेरा हो गया पूरा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, फटाफट बच्चों को लेकर बाहर भागे वो, और अभी ठीक है। लेकिन हो सकता था कि अगर ज़्यादा आग लगती थी तो बच्चे को भी कुछ परिणाम होता, वी डोंट नो, कोई नहीं कह सकता है क्या हुआ उस वक्त, कोई कह सकता नहीं, कौन जीवित रहेगा कौन मरेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस लोक का नाम क्या बताया, मृत्यु लोक। हाँ, इसका नाम जीवन लोक नहीं दिया है, आयुष्य लोक नहीं दिया है, मृत्यु लोक दिया है, मर्त्य लोक, जहां सबसे प्रधान क्या है, मृत्यु, सबसे प्रधान क्या है, अनिश्चिति, कोई निश्चित चीज नहीं। ऐसे ही भागवत में कथा आती है, बड़े संत हैं, बड़े महाजन माना गया उनको, वो बलि महाराज, हाँ, जन्म से राक्षस है, जन्म से दैत्य है, और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र बलि महाराज, ऐसे बहुत पावरफुल वंश में उनका जन्म हुआ है, और थे भी इतने वीर वो, उन्होंने इतना पराक्रम, इतना तपस्या और साधुओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, इतना पुण्य कार्य किया उन्होंने कि उस तेज के कारण वो सब देवताओं को परास्त कर दिया उन्होंने। यहां तक कि भागवत में वर्णन आता है कि जब एक बार वो रथ में बैठकर देवताओं पर आक्रमण करने के लिए पहुंचे तो उनका केवल तेज देखकर देवता लोग भाग गए। जैसे पश्चिम किनारे पे सूरज उगता है, तो सूरज दिखता है पड़ता है ना, ऐसा तेज उनको दिखाई पड़ा, और उसके बल को और तेज को और प्रभाव को देखकर वो देवता लोग की हिम्मत ही नहीं हुई आगे सामने जाने की, सब भाग गए, रण में से भाग गए सब लोग, इतने पराक्रमी थे वो। और बताया गया कि उनके पराक्रम जो था वो ब्राह्मणों की और वैष्णवों की सेवा के कारण था, उन्होंने कभी भी किसी ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं किया, और राक्षस तरुण थे वो, राक्षसों के राजा थे, लेकिन बड़े धर्म को पालन करने वाले थे। यहां तक कि आज उनका वर्णन जो है वैष्णवों के अंदर जो महाजन है 12 उसमें से एक नंबर बलि महाराज को लगता है, और जो प्रहलाद महाराज ने सिखाया नवदा भक्ति, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति जो बताई गई है, उस नवदा भक्ति की चरम सीमा क्या है, आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्णता समर्पण कर देना भगवान के चरणों में, उस नवी प्रक्रिया के वो आचार्य हैं, आदर्श। आत्मनिवेदन किसने किया, तो बलि महाराज ने किया, ऐसे उसका आज भी गौरव होता है। उनके जीवन में क्या था, आपको संक्षेप में बताइए कहानी उनकी, हाँ, कि वो इतने प्रभावित थे कि अपने बल से ही उन्होंने सब देवताओं को भगा दिया अपनी जगह से, सब देवताओं का लोगों को उन्होंने कब्जा कर लिया पूरा। हाँ, जैसे कि अमेरिका आई, अफगानिस्तान पे वॉर किया, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, इराक पर हमला किया, इराक पर कब्जा कर लिया। हाँ, ऐसे देवताओं के जितने लोग थे स्वर्ग लोग, वो सब उन्होंने पादाक्रांत कर लिए, अपना बना लिया उसको, और देवताओं को, देवता तो भाग गए, कोई गुफा में छुप गए, कोई और अदृश्य हो गए, सामने खड़े नहीं हो पाए उनके, फिर भी 3 लोगों की पूरी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। उनको लगता था कि अरे देवता लोग शत्रु है मेरे, और अभी भी मैंने उनको परास्त किया है, फिर भी वो अपना राजा मुझे मानते नहीं है, अभी वो शत्रु ही मानते हैं, वो छुप गए हैं और मुझे दिल से स्वीकार नहीं करते राजा के रूप में। तो गुरु जी ने उसको आदेश दिया कि अगर तुमको इंद्रपद यानी कि देवताओं का राजा का पद जो है वो प्राप्त करना है, उनको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे, 100 यज्ञ करेंगे तो अपने आप ही देवता तुम्हें राजा मानेंगे, तुम इंद्र बन जाओगे। तो उन्होंने 100 यज्ञ करने का अनुष्ठान आरंभ किया। शुक्राचार्य, ब्राह्मण सब लोग बैठ गए और 99 रथ यज्ञ पूरे हो गए उनके और 100वां यज्ञ चल रहा है। अभी देखिए कितना धनवान व्यक्ति है, उसमें कितना पावर है, कितनी शक्ति है, कितना ऐश्वर्य है, कितना बल है, कितनी वीरता है और कितना प्रभाव है। इतने सारे राक्षस गण जो है वो अपने नेता को बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि मेरा नेता कितना बलशाली है, सब शत्रु को परास्त कर चुका है। हा? और 99 यज्ञ करके 100वां यज्ञ पूरा होने जा रहा है और 100 यज्ञ के बाद में वो इंद्र बन जाएगा, इंद्र का पद को प्राप्त करेगा। तो जैसे ही ये घटना हो रही है तो सभी देवता भयभीत हो गए कि अभी तो हमको हृदय से उनको स्वीकार करना पड़ेगा, अभी तो शत्रु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इस यज्ञ को पूरा होता है तो इस यज्ञ के परिणाम के कारण वो हमारे राजा बनेंगे, हम उनके दास बनेंगे। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के साथ सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। हाँ, ध्यान से सुनना, कोई सुना नहीं, बहुत सुंदर कहानी है। तो ब्रह्मा जी उनको लेके गए विष्णु जी के पास समुद्र में। विष्णु जी समुद्र में विराजमान है, वो पुकारते हैं भगवान को, प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्त गाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो संदेश आता है भगवान की तरफ से ब्रह्मा जी को कि हम आएंगे, हम कश्यप और अदिति के गर्भ में जन्म लेंगे उपेंद्र के रूप में, वामन के रूप में, और इस बलि का जो है गर्भ हरण करेंगे और आपकी समस्या समाधान कर देंगे। तो जन्म लिया भगवान ने कश्यप के गर्भ में, मतलब गर्भ अदिति के गर्भ में, कश्यप के पुत्र के रूप में, का नाम उपेंद्र रखा गया। क्योंकि कश्यप और अदिति कौन है, सभी देवताओं के माता पिता है ना, इंद्र से सब चंद्र वरुण वायु जितने भी देवता हैं सबके माता पिता तो कश्यप ही हैं और अदिति हैं। तो और एक पुत्र हुआ तो फिर उपेंद्र मतलब देवताओं का भाई बन गया। छोटे से बालक थे, ब्राह्मण थे, तेज तेज से सुंदर रंग था उनका, बहुत ज्ञान और बहुत तेज से लेके भगवान ने जन्म लिया। और 99 यज्ञ के होने के बाद 100वां यज्ञ जब चल रहा था तो हर यज्ञ में ब्राह्मणों को दान किए बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं होती, दक्षिणा दान देने बिना यज्ञ के लाभ नहीं हो सकता है। तो जब दान देने का समय आया तो बलि महाराज बड़े प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर, खुश होकर आसन में बैठे और सब ब्राह्मणों को उन्हें आह्वान किया, आओ और दान ले लो, जो मर्जी है मांग लो। बड़ी खुशी से, इतना ऐश्वर्य उनके पास में, हाँ क्या नहीं दे सकता वो, तीन लोगों का मतलब, तीन लोग मतलब क्या, स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग और नरक लोग, 14 लोगों का पूरा साम्राज्य उनका ही है, जो चाहे मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ कम नहीं होगा। तो ब्राह्मण लोग खड़े हो गए। उतने में ही ये दान का कार्यक्रम आरंभ होने के थोड़े पहले की बात है, उतने में ही वामन देव यज्ञशाला में प्रकट हो गए। वो इतना प्रकाश उनका तेज, इतना बहुत सुंदर था उनका कि बलि महाराज को लगा कि मैं भी उठकर उनको दंडवत प्रणाम करूं और उनको स्वागत करूं उनका। लेकिन यज्ञ चल रहा था तो उन्होंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। इतने प्रभावित हो गए वो भगवान को देखकर, क्योंकि वो हृदय से भगवान के भक्त थे और उनके गुरु जो है राक्षसों के शुक्राचार्य, वो भी बैठे हुए हैं गाइड कर रहे हैं यज्ञ करने के लिए। वो समझते हैं अरे भगवान आ गए इसके अंदर, विष्णु आ गए, अभी मेरे शिष्य का जो प्रोग्राम है उसको फेल कर देंगे। बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसे गुरुओं को सच्चा गुरु नहीं माना गया, जो कोई स्वार्थ के लिए शिष्य से कुछ प्राप्ति करता है। शिष्य बड़ा आदमी बनेगा तो बड़ी दक्षिणा मिलेगी, बड़ा आश्रय मिलेगा, बड़ा हमारा देखभाल की जाएगी इसी तरह से। तो वे शिष्य को क्या करते हैं, अधिक अधिक भौतिक लाभ देने का प्रयास करते हैं मंत्रों मंत्रों से, यज्ञ करने से, और उसका लाभ फिर खुद भोगते हैं। इस प्रकार के गुरु जी थे शुक्राचार्य। तो भगवान विष्णु जो है वो सब यज्ञ के मालिक हैं, हाँ सब यज्ञ उनके लिए किए जाते हैं। और यज्ञ के पति जो है, यज्ञ के जो मालिक है, यज्ञ के जो लाभ करता है, वही अगर प्रकट हो गए तो यज्ञ करने वाले को खुशी होनी चाहिए ना, कि जिनको पसंद करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं वही स्वयं खड़े हो गए सामने, तो और क्या चाहिए हमको, यज्ञ सफल हो गया हमारा। लेकिन शुक्राचार्य को दुख हो रहा है, अरे ये गड़बड़ हो गया, और बलि महाराज को खुशी हो रही है। तो जब ही वो दान देने का समय आता है तो वामन भगवान सामने आते हैं, बोलते हैं क्या मांगू, बोलो आप जो चाहे मांग लो। वो कहते हैं मुझे यज्ञ करना है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे यज्ञ करने के लिए 3 पग भूमि की जरूरत है। तो बलि महाराज हंसते हैं उनको देखकर, अरे 3 पग भूमि, तुम्हारे पग कितने साइज के हैं, बालक हो तुम, छोटे से, मेरे पग तुमसे बड़े हैं। तुम्हारे पग से तुम जब भूमि नापोगे तो कितनी भूमि मिलेगी? अरे तीन लोग बांगलो में दे दूंगा तुमको, तीन पग की क्या बात कर रहे हो? मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलते बलि महाराज कहते हैं कि आप जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं, सारा वैभव मेरा ही है। आप इसमें एक लोक मांग लो, एक पृथ्वी मांग लो, चलो कोई बात नहीं, कोई एक ग्रह मांग लो आप, मैं पूरा दे दूंगा। हाँ, हम लोग यहाँ पर 450 स्क्वायर फीट का घर अपना बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, 10-15-20 साल तक उसको वो कर्जा भरते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तब वो 450 का छोटा सा घर जो है वो अपना बन जाता है, अपना बोर्ड लगाते हैं, मेरा नाम का घर है ये, मैं मेरे बच्चे को दूंगा मेरे महीने मरने के बाद। हाँ, ये तो पूरा 450 क्या, ये पूरा लोक जो है, लोक उसका कितनी एरिया होती है पता नहीं कर सकते हम, कितने लाखों करोड़ों हेक्टर होंगे पता नहीं, उसमें पर्वत भी होंगे, नदियाँ भी होंगी, उसमें गुफा भी होंगे, क्या नहीं होगा उसके अंदर, बगीचे होंगे, जंगल होंगे, बहुत सुंदर सीन होगा, क्या बर्फ होगा, कहीं कहीं समुद्र होगा, ऐसा पूरा लोक मांग लो बोल रहे हो, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सब मेरा है और मेरा ही रहेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं अरे देखो ऐसा है, जो जिस व्यक्ति को आज जरूरत है उतना ही उसको लेना चाहिए और उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, और अगर आज जो आपको प्राप्त है वो या जो जरूरत है उससे अधिक आप चाहते हो और उसके अधिक की अभिलाषा करते हो तो आपको तीनों लोगों का राज्य मिलेगा तो भी आप सुखी नहीं रहोगे। अरे इसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ तो आप हो, मेरे सामने खड़े हो, उसका प्रूफ देखो आपके पास तीनों लोगों का राज्य है कि नहीं, फिर भी आप 100 यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या आपको उसके ऊपर का चाहिए? जो आपको तीन लोगों का राज मिला हुआ है फिर भी आपको उसके ऊपर का जो प्राप्ति है उसके लिए आप 100 यज्ञ कर रहे हो, एक अधिकार प्राप्त करने के लिए, एक मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, देवताओं का राजपद प्राप्त करने के लिए, देवताओं का सलाम आपको हृदय से मिलना चाहिए कायदे से, इसलिए आप उसके ऊपर के लिए 100 यज्ञ कर रहे हो। तो तीन लोगों को प्राप्ति होने के बाद भी आदमी असंतुष्ट रह सकता है, इसका प्रूफ आप स्वयं हो जो मेरे सामने खड़े हो। तो अगर आपकी ये अवस्था है तो वो देखकर मैं जितना मुझे चाहिए उससे अधिक क्यों इच्छा करूं? तो मुझे पता है जितना मुझे चाहिए, जितना जरूरत है उससे अधिक मैं मांगूंगा तो मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए बड़ा बेहतर यही है कि तीन पग भूमि अच्छी है मेरी। तो वो हंसता है मन में, अरे कहता है कि आप तो लगते हो बड़े विद्वान लगते हो, जैसे जब आए थे आप दर्शन दिया मुझे आपने, तो आपके तेज से देखकर मैं इतना प्रभावित हो गया था कि कितने बड़े ज्ञानी विद्वान होंगे ब्राह्मण, लेकिन आप लगते हो बहुत अनपढ़ हो और अनजान बालक हो आप, आपको जानकारी नहीं है कि किससे क्या मांगना चाहिए और कैसे किसके पहचान कर किस व्यक्ति से क्या मांगना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बोले कोई बात नहीं, यही सही है। तो बीच में शुक्राचार्य जी आते हैं, बोलते हैं मत बोलो उसको, हाँ इसके पैर बहुत छोटे छोटे हैं और तीन ही पग की भूमि मांग रहा है, मत बोलो उसको, हाँ ये विष्णु है, ये छल से आपका सब कुछ छीन लेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर विष्णु स्वयं यहाँ पर आए हुए हैं मेरे दरवाजे पे, जिनके पास मुझे जाना चाहिए या उनके पास पहुँचने की मुझे अभिलाषा करनी चाहिए, उसके लिए तपस्या करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति स्वयं मेरे दरवाजे पे आए हैं, दान मांग रहे हैं ब्राह्मण बनकर, ये मेरा गौरव है, इसमें मेरे जीवन की धन्यता है, मैं नहीं पीछे हटूंगा। वो शुक्राचार्य बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हो, मेरे आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है, आपकी हानि होगी इसके अंदर। बोले नहीं नहीं एक ही जीवन में एक ही घटना में हम गुरु की आज्ञा का अवज्ञा कर सकते हैं, जब गुरु हमको भगवान की सेवा में आगे बढ़ने को विरोध करेगा तो उस गुरु को भी त्याग करना चाहिए। देखिए एक ही घटना ऐसी जीवन में अगर होती है कि गुरु आपके बोलते हैं नहीं भगवान की सेवा मत करो, भगवान के लिए संतुष्टि का कारण मत करो, तो उस गुरु की आज्ञा तोड़ के हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो बलि महाराज बड़े वैष्णव थे, बड़े विद्वान भी थे, शास्त्रों का ज्ञान भी था उनको, इतने पावरफुल गुरु सामने बैठे हुए हैं, फिर भी वो हिम्मत से और निश्चय से बोलते नहीं मैं इनको दान दूंगा ही, मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण है, मेरे सामने हाथ पसारा हुआ है, दान मांग रहे मैं दूंगा। तो गुरु महाराज बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, मैं शाप देता हूँ तुम्हें, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी देखो आपको बोलेंगे कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपकी नौकरी जाएगी, आपका घर जाएगा, आपका धन जाएगा, आपका हेल्थ जाएगा, आपका इज्जत जाएगा, सब खत्म होगा। तो आप 2 मिनट सोचेंगे भाई क्या करूँ, विचार करेंगे, सच में मैं आप बोलूँगा निश्चय दिखाऊँ कि नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करूँ। ऐसा सोचेंगे आप। और अगर हम कफल्लक है, गरीब है, एकदम क्या कहते हैं उसको, कंगाल व्यक्ति है, तो बोलेंगे आप साफ दे रहे हो, सब कुछ खो जाओगे, अरे खोने के लिए है ही क्या इधर, कुछ है ही नहीं खो खो के क्या खोऊंगा मैं, कुछ नहीं खोऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो बलि महाराज थे, उनके पास 14 भुवन का ऐश्वर्य था, धन था, इज्जत थी, पद था, अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे उनके, उनका बहुत दरारा भी था, देवता लोग डरते भी थे उनसे, कितना कितना पोजिशन पावरफुल था उनको, और उनको बोल रहे हो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो सोचने वाली बात है कि नहीं। फिर भी दो डगमगाए नहीं, बोला कि नहीं मैं जो दूंगा दान उसको, तो वो जल देके उनको दान करते हैं, और जैसे शुक्राचार्य बोलते हैं वैसे ही होता है, अचानक विराट रूप धारण कर लेते हैं, इतना विराट रूप कि उनका शरीर कहाँ से कहाँ शुरुआत हो रही है, कहाँ खत्म हो रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा है, उनका शीश कहाँ पहुँच गया, उनके पैर कितने बड़े हो गए, और फिर वो बहुत दिव्य वाद्य बजने लगे, और सब लोग स्तंभित हो गए देख के, ऐसे 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 ऊपर देखने लगे, क्योंकि जो बढ़ते गए तो उनको आकाश में देख नहीं पाया, उनको कहाँ तक पहुँच गए वो। और फिर उन्होंने एक कदम उठाया और सारी पृथ्वी और सारा नरक लोग जो है, राक्षसों का लोग सब नाप लिया, और जो बल से उन्होंने छीन लिया था देवताओं का स्वर्ग लोग, वो दूसरे कदम से नाप लिया, जितना भी उनका प्रॉपर्टी था जिन्होंने बल से, युद्ध से, वीरता से प्राप्त किया था, वो सब प्राप्त नाप लिया उन्होंने। और पूछ रहे बाद में, अरे दो पग में तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, तीसरा पैर कहाँ रखूँ, तीसरे पैर के लिए भूमि कहाँ है तुम्हारे पास। ये मैं जो कथा में जो आपको पहले शुरुआत किया था, हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका लिंक यहाँ पर है। हाँ एक क्षण के पहले वो 14 भुवनों का मालिक था, राक्षसों का राजा था, ऐश्वर्य, मान सम्मान, बल, वीरता सब उसके पास था, और एक क्षण के अंदर दो पैर उठाया भगवान ने, तो कहीं का नहीं रह गया। वैसे जो करोड़पति व्यक्ति रात को आराम करके खाना खा के सो गया था, सुबह एक पैसे का भी उसके जेब में नहीं था, एक रुपया भी जेब नहीं था, तो कपड़ा पहना था, पैंट और शर्ट वही उसका धन था, और जीवित था वही, इतना ही धन था उसका। विदाउट टिकट गरीब कफल्लक बन के बम्बई आया, बोरीवली आया, विदाउट टिकट, विदाउट पैसा रिक्शा में बैठा, दोस्तों के पास गया, वहाँ पर कितना उसमें क्या बोलते हैं, दिल में कितना दुख रहेगा उसके, अरे इज्जत से जब मैं इसके घर में आता था, आज मैं भिखारी बन के आ रहा हूँ, हाँ लाचार बन के आ रहा हूँ, लाचार, वो कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल में आके वो पैसे फेंकते था, अरे कौन सा बड़ा डॉक्टर है उसको मुझे दिखाना है, कितना फी है उसका, 800 रुपये ले लो, मुझे उसका अपॉइंटमेंट चाहिए। ऐसा व्यक्ति कैजुअलिटी में आके फ्री में ड्रेसिंग कर रहा है, बैंडेज बता रहा है, मेरी दुख की कहानी बोली, वो दुखेर को था, दुख पर कथा बता रहे वो। वैसे बलि महाराज का हुआ, एक क्षण के अंदर इतना बड़ा आदमी जो है एकदम भिखारी लाचार बन गया, जिसके पास अपना दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए भी कुछ नहीं है। उस वक्त भगवान ने जैसे धन तो छीन लिया, पूरा प्रॉपर्टी सब छीन लिया, अभी इज्जत को छीन रहे हैं। हाँ वरुण को बुलाया और वरुण पास से उसको बांध दिया, जैसे हम लोग किसी गुनहगार को पकड़ते ना और रस्सी से बांध लेते हैं फिर घसीटते हैं उसको, पुराने जमाने में ऐसे गुनहगारों को रस्ते से घसीटते थे सबको सामने से, ताकि उसको थोड़ा अनुभूति हो जाए कि क्या होता है गुनाह, मतलब गुने का परिणाम क्या होता है। ऐसे बड़े बलि महाराज को वरुण पास से, गरुड़ जी ने वरुण पास से बांधा उसको, और बांध के उसको ले जा रहे हैं कैदी के रूप में। और क्या स्थिति है उस समय, उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी है, उनकी बहन उनके सामने खड़ी है, रत्नावली, विंध्यावली उनकी पत्नी, रत्नावली उनकी बहन, दोनों सामने खड़ी है। और जितने मंत्री उसके थे, जितने अधिकारी, जितने राक्षसों के सेनापति थे, वो सब खड़े हैं, उनके दोस्त खड़े हैं, उनके सामने उनकी बेइज्जती हो रही है, हाँ जिसको वंदन कर रहे राजा के रूप में। और ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, वो देख रहे हैं कि हमारा राजा बेचारा हार गया, उनके दुश्मन जो उनके सामने खड़े होने के वो हिम्मत नहीं करते थे कभी, हाँ वो सब सामने आ गए देवता लोग, अरे हमारे वामन देव आ गए, अभी हमारे कल्याण करेंगे, बलि महाराज का सब कुछ खत्म कर देंगे। वो हंस रहे हैं खुशी से कि आखिर हमने विष्णु का सहारा लेकर तुमको परास्त कर ही दिया, हाँ कितना बड़ा दुख होता रहेगा, जिन लोगों को देख, जिसको देख कर ये हमारे शत्रु जो है वो भागते थे, ऐसे शत्रुओं के सामने उनकी इतनी बेइज्जती हो रही है, मतलब ना मान बचा, ना धन बचा, ना कुछ बचा, और फिर भी उनके मन में जो है भक्ति जो है वो वैसे की वैसी है जो पहले थी। कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों के दृष्टि से, बलि महाराज के कितना अपमान हो गया उनका, हाँ कितना कचरा हो गया उनका पूरा सबके सामने। लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि बलि महाराज वरुण के पास से बंदे जाने के पश्चात गरुड़ के द्वारा खींचे जा रहे हैं, लेकिन मन में दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे भगवान की इच्छा मेरे पास, मेरे लिए जो भी कुछ है वो मेरे लिए वंदनीय है, यही मेरे लिए जीवन का परम लक्ष्य है कि मेरे भगवान उससे प्रसन्न रहेंगे, और अगर ये इनकी इच्छा है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और फिर वो कहते हैं ये मेरा सर है, ये आपके तीसरे कदम के लिए मैं आज प्रस्तुत करता हूँ। सर का मतलब क्या होता है? स्वयं, हाँ अहम बोलते हैं उसको, ये जो अहम है ना सबसे लास्ट होता है। आप गरीब भी बन जाओगे, कुछ भी हो जाओगे, बीमार पड़ोगे, एकदम गए गुजरे बन जाओगे, फिर भी अहम एक वस्तु होती है। बोले फिर भी भिखारी बोलते हैं कि मैं तो कुछ हूँ, हमें दादर के प्लेटफॉर्म का भिखारी, आप तो भाईंदर के हो। एक व्यक्ति को अपना एक गर्व होता है हर चीज का, भले आप उस पर हंसेंगे देखकर, लेकिन वो पता है क्या करते हैं वो भिखारी लोग, जब उनकी बेटी की शादी होती ना तो अपने जमाई को अपना ब्रिज का जो दस्ता है वो दान दे देते, क्या बोलते हैं उसको, दहेज भी देते कि आज के आगे मेरा जमाई यहाँ पर भीख मांगेगा, मैं चला जाऊँगा और लोअर पड़ेल के प्लेटफॉर्म पर चला जाऊँगा। ऐसे होता है हा? वो इरे जो कुत्ता होता है ना, वो जहाँ जाता है साफ सब जगह पेशाब करता है, क्या उसका मतलब है कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, दूसरा आएगा तो भोकेगा उसके ऊपर, उसका कुछ है नहीं वो, लेकिन वो अपना एक कार्य करता है, वो सोचता है कि सब मेरा प्रॉपर्टी, उस तरह से भिखारी का कुछ नहीं, सब गवर्नमेंट का है, लेकिन भिखारी सोचता है ये मेरा एरिया है, यहाँ पर केवल मैं भीख मांग सकता हूँ, ये मेरा प्रॉपर्टी है, राइट मेरा है यहाँ पर, और वो अपने जमाई को उसको दे देता है, तो जमाई वहाँ पर सोचता है कि अभी आज से मेरा है। ऐसी स्थिति होती है, अहम जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो सबसे गरीब से गरीब, गरीब बहुत खराब दिखने वाला आदमी जिसके पास कुछ मान सम्मान कुछ है ही नहीं, फिर भी उसको एक अपना एक अहम होता है। तो वो जो अहम है वो कितना होगा बलि महाराज के पास, उसके पास क्या था नहीं, वीरता, ब्राह्मण सेवा, सब कुछ, पुण्य कार्य, अधिकार, बल, क्षत्रियता, शास्त्रता, तेज, सब कुछ था उसके पास, तो कितना बड़ा होगा उसका अहम। वो जो अहम है वो भगवान के चरणों में अर्पण कर लेते, इसलिए वो आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण के आचार्य हैं, इसलिए वो आचार्य माने गए, महाजन माने गए, और भगवान भी सबके सामने उसके सर पर पैर रखते हैं और उसके नरक लोक को ढकेल देते हैं उसको, मतलब एक इतना तो अपमान निकल गया, हो गया उसका, और एक लास्ट आखिर का झटका दे दिया। सब देवता लोगों ने आनंद व्यक्त किया, सब देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि किया, वाह बहुत बढ़िया, आनंद व्यक्त किया, विजय व्यक्त किया, और किसी पर क्या बीत रही है, सब कुछ हरण हो गया उसका, लेकिन फिर भी वो आनंद में थे। लोगों की जो कहानी है बलि महाराज की, वामन देव की, वो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन भागवत में यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, उसके आगे भी उसका वर्णन दिया गया है। तो बलि महाराज को भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें इंद्र से भी अधिक पावरफुल जो लोक है वो बना दूंगा, जो मेरा स्पेशल इंजीनियर है विश्वकर्मा, उसके द्वारा मैं इंद्र से भी अधिक पावरफुल लोक जो है, अधिक सुंदर, अधिक ऐश्वर्य संपन्न लोक आपके लिए बनाऊंगा, उसका नाम रहेगा सुतल लोक। इंद्र भी उसकी घृणा, मतलब क्या कहते हैं उसको, द्वेष करेगा, मतलब उसके लिए चाहत पैदा होगी कि अरे मेरे से बड़ा राज्य इसको प्राप्त होगा, ऐसा लोक मैं दूंगा आपको, और मैं जानता हूं कि जब ये लोक मैं तुम्हें दूंगा तो देवताओं के मन में जो मेरे भाई लोग हैं, मतलब उपेंद्र बनकर आए ना वो, कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर आए, मतलब देवता उसके भाई हो गए, तो ये जो मेरे बड़े भाई लोग हैं देवता लोग, ये आपका द्वेष करेंगे, हो सकता है आप पर हमला भी करेंगे इसको प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या के रूप में, हाँ तो मैं मेरा सुदर्शन चक्र जो है वो परमानेंटली आपके साथ में रखूंगा, जब भी कोई हमला होगा आप आराम करो, वो उसको संभालेंगे, और यहाँ तक नहीं, मैं तुम्हारे सूतल लोक में तुम्हारे महल के बाहर द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। यह है भगवान का प्रेम अपने भक्त के प्रति। हाँ बाहर से क्या दिखाई पड़ रहा है, अरे इतना अपमान कर रहे हैं, इतना उरण पास से बांध के घसीट रहे हैं, सब कुछ छीन लिया है, कंगाल भिखारी बना दिया इसको, क्या भगवान की भक्ति करके फायदा है, ऐसे करते हैं सब भगवान, हम नहीं करेंगे उनकी भक्ति बाबा, सब हम शंकर की भक्ति करेंगे, हम गणेश जी की भक्ति करेंगे, अब ऐसा कहीं हुआ नहीं है गणेश जी की भक्ति वाले लोगों का, ये भगवान के साथ में सब ऐसा होता है, हाँ सुदामा को भिखारी बना दिया, खाने को भी नहीं दिया, मोहताज कर दो रोटी के लिए, हाँ सब कुछ सबका छीन लेते हैं। वो पांडवों को जंगल भेज दिया, कुंती देवी को कितना कष्ट दिया, क्या क्या करते ये भगवान समझता नहीं। नहीं हम नहीं करेंगे उसके ऊपर, हम तो अपना शंकर पार्वती की भक्ति करेंगे, धनवान बन जाएंगे, माला माला हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, भगवान उसके दास बने। और जो भाग्य देवताओं को नहीं है, देवताओं को क्या स्थिति है, वो परेशान होते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी उनको लेकर जाते हैं भगवान के पास मिलने के लिए। लेकिन भगवान कहाँ है, अरे बीच समुद्र में है, वो क्षीर सागर में, वो खाली उनका एंट्री कहाँ तक है, किनारे तक, उनके पास कोई बोट नहीं है वहाँ जाने के लिए, चलो भाई बोट लेते हैं और जाके उनको मिल के आते हैं, नहीं एंट्री नहीं, उनको किनारे पे खड़े रहना है, वहाँ से ही पुकारना है, वहाँ से प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है, रोना है, जो भी करना है वहीं करना है। और दर्शन भी नहीं होते उनको, भगवान जब मर्जी होगी तब उनका रिस्पॉन्स करेंगे, और कैसे, अरे ब्रह्मा जी के हृदय में उसका मैसेज भेज देंगे कि ये मैसेज तुम्हारे देवताओं को बताओ, मेरे आज्ञा पालन करो, मैं आऊँगा उसके बाद, जाओगे आप, मिलते भी नहीं है उनको, हाँ दर्शन भी मिलने का सवाल नहीं होता है, तो फ्रेंडशिप करने का तो दूरी बात रहेगी। हाँ ये तो दास बन रहे, दास फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हैं, मेरे अपने भक्त का दास बन रहे हैं, कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। ऐसा नहीं है कि बलि महाराज ने सब कुछ ये भगवान को दास बनाने के लिए किया, ऐसा नहीं है। बलि महाराज को पता नहीं था, जब उनका सब कुछ छीना जा रहा था तब उनको कोई कान में आकर बताया नहीं था, डोंट वरी आपको एक लोक बना के रखा है मैंने, आप दे दो, दान दे दो, मैं सब कुछ दे दूंगा आपको सब, ऐसा बताया नहीं गया था। कई वर्णन में ऐसा आया कि किसी देवता ने कान में बता दिया आप दान करने को हिचकिचाओ मत, सब कुछ दे दो, आपको सब कुछ भगवान लौटा के देंगे। तो फिर आश्वस्त होकर उन्होंने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा नहीं है, उनको कुछ पता नहीं था, उनका सब कुछ सामने लिया गया, छीना गया उनसे छल कपट से, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि तो भगवान के भक्त को विश्वास हुआ है कि आत्मसमर्पण ऐसी एक क्रिया है जिसको करने से कभी कोई नुकसान नहीं होता है। हम लोग डरते हैं ना भगवान को, बोले कि डोनेशन दे दो, भगवान का उत्सव है, तो बोले नहीं 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 11 रुपये दे देने, 5 रुपये देंगे, 101 दोनों ने 51 देंगे, मैंने प्रभु जी बहुत ज़्यादा होता है प्रभु, जैसे होटल में जाएंगे वाइफ को लेके, बोले हमको आज पाव भाजी खाना है, 250 रुपये बिल हो जाएगा, तो आराम से देंगे। भगवान के पास जाएंगे, भगवान के भक्त लोग आएंगे, बोलेंगे जन्माष्टमी का उत्सव है, थोड़ा डोनेशन दे दो भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष में, बोले कितना दो, बोले 500 का पर्ची काटो, अरे 500 तो बहुत होता है यार, 100 रुपये काफ़ी है, अरे 100 रुपये में क्या होता है, हाँ दो ब्रेड खाएंगे वड़ा खाएंगे 100 रुपये हो जाएंगे, क्या 100 रुपये में होता है, नहीं नहीं प्रभु 100 रुपये ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होता है, कितना सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं कि भगवान को देने से नुकसान हो जाएगा, अपने लिए खर्च करेंगे तो लाभ हो जाएगा। हाँ अब पैंट पीस की दुकान में जाएंगे तो सबसे बढ़िया पैंट पीस दिखाओ, उसे बोलेंगे रेमंड का अच्छा बढ़िया सा दिखाओ, ये तो बहुत सस्ता है, महंगा वाला दिखाओ, अपने लिए ना वो, इसलिए अधिक से अधिक अच्छा देखेंगे, इतना जेब से ज़्यादा खर्च करेंगे। आत्मसमर्पण ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करती, इसको विश्वास की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, पता होना चाहिए, हमने सुना चाहिए कि क्या इसका महत्व है, क्या इसकी शक्ति है। आत्मसमर्पण ऐसी क्रिया है जो हम जब भगवान के लिए करते हैं तो भगवान को वो व्यक्ति खरीद लेता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का धन हमको चाहिए, भगवान का इज्जत हमको चाहिए, भगवान का बल हमको चाहिए, भगवान का जो भी अच्छी चीज़ है हमको सब चाहिए, और भगवान नहीं चाहिए, भगवान तुम वहीं रहो, आपका जो माल है हमको दे दो, अच्छी अच्छी आपके पास जो वस्तुएं हैं वो हमको चाहिए, उसको राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं, वो भगवान को छोड़कर भगवान की प्रॉपर्टी को भोग लेना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान को सपना सब कुछ दे देता है, राक्षस बोले क्या मूर्ख आदमी है, क्या पागल हो गया आदमी है, दिमाग खराब हो गया उसका। लेकिन जो भगवान का आश्रय लेता है, अपने आप को अर्पण कर लेता है, भगवान उसके बन जाते हैं। भगवान का केवल धन उसका नहीं बनता है, जैसे कि आप अगर कोई बालक छोटा सा है वो पूर्णतः अपने माता पिता के आश्रय में है, पूरा एकदम उसको कुछ पता नहीं है, क्या खाना कहाँ से आ रहा है, क्या स्कूल की फीस कहाँ से आ रही है, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, नए जूते कहाँ से आ रहे हैं, हाँ क्या चाहिए, नेकलेस चाहिए कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं उसको, वो पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर है। तो उसका मतलब क्या होता है, माता पिता भी उसके हो गए पूरी तरह से, बोले अरे मेरा बालक है बेचारा, मुझ पर आश्रित है, मेरे पर डिपेंड है, वो पूरी देखभाल करूँगा उसका। इसका मतलब माता पिता तन मन धन से आपके हो गए, माता पिता की सारी प्रॉपर्टी भी आपकी ही है। बोले अगर मम्मी भूख लग रही है तो बोले कि नहीं नहीं गुलाब जाम आपके लिए नहीं है, आपके लिए दाल रोटी है, गुलाब जाम वो बड़े बच्चे के लिए, ऐसा होता है क्या, नहीं, जो भी तुम्हारा माता पिता समझते हैं जो भी मेरा है वो ले लो भाई तुम। तो वो क्या करते, बोलेगे एक ही प्लेट में भी एक गुलाब जाम बचा है, माता बोलेगी ले लो तुम खा लो, अपना भी हिस्सा निकाल के दे देंगे वो। इसका मतलब अपनापन है ना, जिसका आश्रय आपने लिया है। मैंने देखा है मेरी माँ कभी भी जब भी मैं कुछ मांगता था ना अपने हिस्से से निकाल के मुझे देती थी, जब भी नहीं था घर पे। कभी भी उसने ऐसा सोचा नहीं करे एक ही गुलाब जाम बचा था मेरे लिए, वो मेरे बच्चे ने खा लिया, नहीं सोचती कभी ऐसा। प्रेम ऐसी वस्तु है, आश्रय ऐसी एक क्रिया है, जिसका आश्रय हम ग्रहण करते हैं वो अपना सब कुछ जो है वो आश्रय जिसने लिया हुआ है उसके लिए दे देता है। और अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान क्या वस्तु है, क्या क्या व्यक्ति है वो, सब कुछ उनका है, हर चीज उनकी है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उनकी नहीं है। हाँ, जन्माद्यस्य यतः, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब उनका है, उनके द्वारा निर्माण किया गया है। हाँ, कोई वो अंबानी बिरला टाटा नहीं है, वो कुछ एक इंडिया का कुछ धन उनके पास नहीं है। सारा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, सारा भौतिक जगत, सारा आध्यात्मिक जगत, कौलू वृंदावन द्वारका मथुरा अयोध्या वैकुंठ सब उनका है। और सारी प्रॉपर्टी कैसी है वो, ऐसे कहते हैं कि उनके पास अनंत लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, उनको अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा करते रहती है। और ऐसी एक लक्ष्मी के साथ जब उनका प्रेम का झगड़ा हुआ, ऐसे ही प्रेम प्रेम झगड़ा करते ना, तो उस प्रेम के झगड़े में एक कंगन टूट गया लक्ष्मी का, तो उसने ऐसा गुस्से में फेंक दिया उसको। तो उस टूटे हुए कंगन पे पूरा दुनिया का जो इकोनॉमिक्स है ना वो चल रहा है, पूरा वर्ल्ड का जो आप देख रहे हैं, सारे जितने भौतिक जगत जितने ब्रह्मांड है इनका सारा जो धन का अर्थ कारण है ना इकोनॉमिक्स, वो सब वो टूटे हुए कंगन पे चल रहा है। और ऐसे कई कंगन लक्ष्मी जी पहनती है, और केवल कंगन नहीं पहनती है, गले में भी पहनती है, कान में भी पहनती है, कमर में भी पहनती है, पैर में भी पहनती है, ऐसे लदी लदी हुई है वो गहनों से। और ऐसी लदी हुई गहनों वाली अनंत लक्ष्मियाँ और विष्णु के चरणों में रत रहती हैं सेवा करने में, जैसे अनंत लक्ष्मियों के नाथ है वो। और केवल लक्ष्मी नहीं उनके पास, सब प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है, अनेक लोग हैं उनके पास। ऐसे व्यक्ति का अगर आप आश्रय ग्रहण करते हो तो आपको कुछ कमी रहेगी क्या किस चीज़ की, अरे नहीं नहीं मैं सब कुछ छोड़ के उस पर जा रहा हूँ, पता नहीं अगले डिनर में क्या मिलेगा, पता नहीं रहने को कहाँ जगह मिलेगी, ऐसा होता है क्या कभी? किसी बड़े आदमी के घर में जाओगे और चिंता करोगे प्रभु जी खाना खिलाओगे ना आप, अरे क्या पागल आदमी है, क्या पूछता है आदमी, कुछ अक्कल है क्या, किसके पास आया है तो मालूम है उसको। ऐसे तुम्हारे 10 पुस्तकों को मैं पूछ सकता हूँ, 10 पुस्तकों की देखभाल कर सकता हूँ जन्म से एंड तक। आप रात शाम की रोटी की बात कर रहे हो, बलि महाराज क्या पूछ रहे हो वामन को, अरे 3 पग भूमि मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो मालूम है क्या, मैं बलि महाराज हूँ, एक लोक उनको दे सकता हूँ, ऐसा ही सोचेगा ना आदमी हूँ। तो जब हम भगवान के सामने खड़े रहेंगे और कह रहे हैं प्रभु जी आपको 500 रुपये दे रहे हैं, तनख्वाह मेरी 5,000 है, 1/10 मैंने आपको दे दिया, कैसे चलेगा मेरा महीना का हिसाब किताब, बोला चिंता मत करो यार, दे रहे किस कर रहे हो, मुझे दे रहे हो ना, मेरा जिम्मेदारी है, तुम मुझे अर्पण कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप 1/10 दे रहे हो, आपकी 1/10 देखभाल मैं करूँगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम, वो क्या कहते हैं, जितना आप मुझे दोगे उतना मैं आपको दूंगा। और आप बोलेंगे कोई बात नहीं भगवान 100% दूंगा मैं आपको, तो क्या बोलेंगे वो, मैं अभी आपको 100% दूंगा। तो लाभ किसका हुआ, आपका 100% कितना होगा, हाँ 1 लाख होगा, 1.5 लाख फार ज्यादा से अधिक से अधिक, हाँ 2 लाख का घर होगा आपका, 2.5 लाख का, एक गरीब से गरीब आदमी को बोल रहा हूँ मैं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम गरीब से गरीब आदमी रहेगा तो 1.5 लाख का ही झोपड़ा रहेगा उसका, हाँ कुछ 2-4-5,000 रुपये बैंक में रहेंगे उसके, हाँ 2-4 जोड़ी कपड़ा रहेगा उसके पास, 1-2 गहना होगा वाइफ के पास, सब प्रॉपर्टी इकट्ठे का तो कितना हो जाएगा उसका, समझो सब कुछ एकदम निकाल निकाल के सब 2-4 लाख हो जाएगा मैक्सिमम, वो आपका 100% आपने आप दे दिया। और भगवान बोलेंगे मैं मेरा 100% आपको दूंगा, अरे उनका 100% कितना हो गया, सोचो जरा उनका 100% कितना हो गया, आप क्या दे रहे हो उनको और वो आपको क्या देने वाले हैं, हाँ किस चीज़ के किस व्यक्ति को आप समर्पण करने वाले हो वो इम्पोर्टेंट है, वो भगवान विष्णु है, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है वो। इसलिए जीवन में दुर्घटना आई उनके, अचानक दुर्घटना आई, हाँ एकदम राजा से रंग बन गए, एकदम कंगाल भिखारी बन गए वो, लेकिन कुछ ही छप्पल में अगर भगवान के दया से सुतल लोक के मालिक बन गए। भगवान ने कहा कि आप यहाँ पर ऐसे रहोगे मैं आपको वरदान देता हूँ, एक तो मेरा चक्र भेज ही दिया है आपको रक्षा करने के लिए, ये मेरे भाई लोग जो है वो रक्षा करेंगे, फिर भी चक्र आपकी रक्षा करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा उससे, और आप किसी भी भोग में लिप्त नहीं होगे, हाँ कोई चीज़ से प्रभावित नहीं होगे, आप किसी रोग से या किसी थकान से या किसी ईर्ष्या से या गलत चीज़ से आप प्रभावित नहीं होंगे, हमेशा मस्त रहेंगे आप, फर्स्ट क्लास अच्छे गुण संपन्न रहेंगे, आपके राज्य में रोग नहीं रहेगा, आपके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, आप कभी थक नहीं जाओगे। कितना बड़ा वरदान दिया उन्होंने, आप पढ़िए उस श्लोक में भगवान दिया है, और कहते हैं मैं भी आऊँगा आपके साथ, राजा बनकर नहीं आऊँगा, आपके बाजू में कुर्सी बैठकर बैठूंगा नहीं, आपके साथ साथ में आपका दास बन के रहूंगा, और इतने इतने साल हजार साल राज्य करोगे आप, और उसके बाद आप इंद्र बन जाओगे, और इतना सब जीवन हजारों साल जियोगे, अंत में मेरे धाम में लौट के आओगे, मतलब यहां पर भी माला माल कर दिया उनको, पूरा इज्जत जितना खोया था सब कुछ दे दिया उनको, और सब कुछ होने के बाद जब जीवन खत्म हो जाएगा तो ये सूतल लोक, ये प्रॉपर्टी, ये इंद्रपद सब यही रहेगा। बोले अरे फिर कंगाल बना दिया, हाँ एक तरफ से दे रहे हैं एक तरफ से छीन रहे हैं, क्या करके करते क्या है वो तो समझ में नहीं आता है, हाँ एक तरफ कंगाल बना के घसीट रहे हैं उसको, फिर सूतल लोक दे रहे हैं, फिर इंद्रपद दे रहे हैं, फिर वरदान दे रहे हैं, और मृत्यु का समय आया बोलते हैं अभी हरि बोल सबको छोड़ो चलो जाओ, पर फिर कंगाल बना दिया नहीं। जब मृत्यु होता है ऐसे भक्त का तो गौलोक धाम में उसको लेके जाते हो, अपने घर में लेके जाते हैं, अब तक तो ये ऑफिस में काम कर रहे हैं, पूरा ऑफिस में लाभ हानि कर रहे हैं उसकी, अभी ऑफिस में आपसे घर लेके जा रहे हैं, कोई आपका समझा साहब होगा आपका, कोई ऑफिसर होगा बहुत प्रेम करता है आपसे, यहाँ आपके लंच का ऑर्डर किया उसने, आपके कैंटीन से कुछ मंगा लिया, थोड़ा सा प्रमोशन दे दिया, थोड़ा सैलरी बढ़ा दिया आपका, हाँ हमने कितना बढ़िया साहब है, लेकिन वही साहब बोलेगा आप शाम को मेरे घर पर आ जाओ, मेरे बर्थडे है आपको खाने पर आ जाओ, तो वो बड़ी प्राप्ति हुई कि नहीं, आपने घर पर बुला लिया आपने उसको, उसने आपको घर पे बुला लिया, सम्मान दिया आपके मित्रों को, मित्र का सम्मान दिया आपको, और आपके साथ में बिठा के खाना खिलाया, तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो वैसे भौतिक दुनिया में तो लाभ दिया बलि महाराज को भगवान ने, लेकिन जीवन के अंत में इतनी बड़ी प्राप्ति दी, वो सब छीन ली, और उससे भी बढ़िया स्थान उसको दे दिया, अपने घर में दे दिया, ये है समर्पण का प्रभाव, और उसको देखकर हमको चलना चाहिए, कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, भगवान को देने का समय आया कभी ना नहीं बोलना, कोई सोचना नहीं उसके बारे में क्या होगा, क्योंकि किसको दे रहे हैं आप उसको सोचो, किस व्यक्ति के आनंद को दे रहे हो, और वो क्या व्यक्ति है, और वो समर्पण करने के बाद में उन्होंने क्या क्या किया है अपने भक्तों के लिए, हाँ भक्तन संग तुमने कहा ना पियो, अपने भक्तों के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, संत लोग पुकारते भगवान को, हाँ अरे प्रहलाद के लिए क्या नहीं किया आपने, सुदामा के लिए क्या नहीं किया, गोपियों के लिए क्या नहीं किया, कितने भक्तों का वर्णन शास्त्र में करते हैं, अजामिल तब पापी था वो, आपको पुकारा उसने, क्या किया आपने उसके लिए, वाह क्या बात है, कितने गिरे हुए लोगों को आपने उद्धार किया है, केवल उन्होंने आपका आश्रय लिया इसलिए, अजामिल गणिका गीद, गीद मतलब वो जटायु वो था ना गिदड़ था ना गिदड़ जन्म का था वो, उसने आपका आश्रय लिया, अपनी सेवा की, अपने हाथ से भगवान ने उसका श्राद्ध किया, अग्नि दिया उसको, कितना भाग्य उसको, भगवान ने स्वयं उसका पुत्र बनकर उसका अग्नि दिया उसको, धाम में प्रवेश करा दिया उसको, हाँ अजामिल इतना पापी था ब्राह्मण, इतने पाप कर चुका था, आखिर में भगवान को पुकारा, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अरे द्रौपदी इतनी बड़ी राजकन्या थी, वो राज स्त्री थी, राजमाता थी, पांडवों की पत्नी थी, असहाय होकर पुकारा, इतनी बड़ी इज्जत जाने वाली थी उसकी सबके सामने, अचानक प्रकट होकर उन्होंने इतना वस्त्र दिया उसको कि आज तक उसका गीत गा रहे हैं हम लोग बैठकर, हाँ कैसा भगवान ने उसको सहारा दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी भयंकर अवस्था में अगर वो सहारा देकर उद्धार कर सकते हैं तो क्या हमारा नहीं कर सकते क्या, विश्वास होना चाहिए उनको, श्रद्धा होनी चाहिए कि क्यों हम लोग छल कपट करते हैं, क्यों चीटिंग करते हैं, क्या जरूरत है, उसका आश्रय लो, आपको कुछ चाहिए ना उनके पास जाओ, हाँ अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उद्धार दी, मतलब क्या हुआ आपको आज बहुत इच्छा है कि आपको बहुत कुछ चाहिए तो उनके पास ही मत जाओ, उनके पास ही जाओ, किसी देवता के पास मत जाओ, क्योंकि वो आपको वही देंगे जो यहाँ का होगा, और जितना करोगे उतना ही देंगे, उसके आगे नहीं देंगे, भगवान वो देंगे आपको जो आपके लिए अच्छा होगा, आप मांगोगे कुछ लेकिन वो देंगे आपके लिए जो आपके लिए अच्छा है। जैसे आपके पास कोई आपका बालक आया बोला पापा सिगरेट दो, तो आप एक तमाचा दोगे उसके, सिगरेट तो बाजू में रह गई, अरे क्या पापा है, मांग कुछ रहा हूँ दे कुछ रहे मुझे लेकिन पापा जानते हैं कि उसके लिए अच्छा क्या है, इसलिए मांग कुछ रहा है लेकिन दे तमाचा रहा है उसको, ये प्रेम का लक्षण है। वैसे कहते हैं अगर आप बहुत आपके पास इच्छाएं तो भी उनके पास जाओ, अगर आपके मन में कोई इच्छा नहीं, आप तपस्वी हो तो भी उनके पास जाओ, अगर आपके पास मोक्ष की इच्छा है, अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो वा उदारति, मोक्ष की इच्छा भी है फिर भी उनके ही पास जाओ, और किसके पास मत जाओ, एक ही व्यक्ति के पास जाओ, इसमें आपका भला है। क्योंकि वो व्यक्ति न केवल आपको वस्तु देगा, साथ साथ में आपका जो कल्याण होगा वो वस्तु भी आपको हाथ में दे देगा। जैसे भक्तिविधान में आप आओगे बीमार बन के आओगे तो आपको बीमार के साथ साथ हरिनाम भी मिलेगा फ्री में, कोई चार्ज नहीं उसका। कोई पेशेंट को मालूम नहीं कि आपको हरिनाम मिलने वाला है, प्रसाद मिलने वाला है, भगवान का दर्शन होने वाला है, वो सब फ्री में मिलता है उनको, आते इलाज करने के लिए। लेकिन भक्तिविधान में आएंगे तो उनको जो जरूरत है उसके आगे जाकर वो भी प्राप्ति होती है। वैसे ही भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही, साथ साथ में जो आपके कल्याण के लिए आवश्यक है वो भी मिलेगा। ये समर्पण की शक्ति है, इसलिए समर्पण करना सीखो, कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। अरे आप बोले प्रभु जी अच्छा है, हाँ अरे मेरे अमीरों की तनख्वाह कितनी होती है, कितनी आमदनी होती है, उनको जाके बताओ ना ये प्रवचन, हम गरीबों को बता रहे हैं। ये अमीरों को गरीबों को सब लागू है एक ही तरह से, क्योंकि सब कुछ धन जो गरीब के पास में होता है थोड़ा सा और बहुत सारा अमीर के पास होता है, दोनों भगवान का ही होता है। दोनों का जो प्रॉपर्टी है, प्रोप्राइटरशिप है, वो तो भगवान की ही है। अमीर का धन और गरीब का धन दोनों भगवान का होता है, हमारा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। लेकिन जो अपना समझता है अपने पास रखता है फिर वो पाप करता है, क्योंकि वो उनका धन है, वो अपना समझ के हम अपना खर्च करते हैं। लेकिन जो उनका समझ के उनके लिए अर्पण करते हैं वो सब कुछ जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, समाधान हो जाता है उसके जीवन में। कुछ नहीं होने पर भी, आज सुबह बताया ना बड़े सर ने बताया प्रवचन में, वो जो कृष्ण देव राय थे वो ब्राह्मण को मिलने गए थे, वो बोलते हैं मैं राजा हूँ कृष्ण देव राय, आपको कुछ भी दे सकता हूँ। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों इतने गरीब दिख रहे हैं आप? नहीं नहीं मेरी पत्नी कुछ भिक्षा करती है थोड़े चावल मिल जाते हैं, मेरे आंगन में इमली का पेड़ है वहाँ से थोड़ा इमली का जो भी रस बना के पका के उसको हम लोग खा जाते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है। नहीं ले लो, मैं कृष्ण देव राजा हूँ आप मांगो। बोले नहीं नहीं मैं संतुष्ट। संतुष्ट क्यों है? वो राजा खड़ा है तो बहुत सारा धन दौलत मिल सकता है उसको मांगेगा तो, लेकिन वो कह रहा नहीं चाहिए क्योंकि वो अपनी भक्ति में संतुष्ट है। सुदामा की पत्नी बोल रही है सुशीला जाओ जाओ तुम जाओ द्वारका जाओ, तुम्हारे मित्र से मिलो, अरे कोई फ्रेंडशिप का फायदा तो होना चाहिए ना, तो बड़ा फ्रेंड हो के फायदा क्या है तुम्हारा, इतना बड़ा फ्रेंड है तुम्हारा द्वारकाधीश कृष्ण, जाओ उनके पास कुछ मांगो उनसे। बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। अभी आप बोले जरूरत कैसे नहीं है? अरे भूख के मारे शरीर के ब्लड के अंदर ग्लूकोज इतना कम है कि वो कांप रहा है ऐसे 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 कांप रहा है, देखने रहे इतने भूखे हो फिर भी संतुष्ट है। बोला नहीं चाहिए कुछ। पत्नी धक्का मार के भेजते जाओ तुम जरा एक बार तो मित्र को मिल के आओ, तो घर में कुछ है ही नहीं, पड़ोसी से पोहा उधार मांग के ले गया था कि जा रहा हूँ दोस्त को मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो देना था ना भेंट उसको, गरीब हो तो क्या हुआ, लेकिन दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। कितना बढ़िया स्टैंडर्ड था पुराने जमाने में। हाँ हम बोले कि हमारे पास कुछ आने तो दोस्त को क्या दूंगा, जाने तो ऐसे जाऊँगा खाली आप, वो उधार लेके जा रहा है पोहा और पहुँचते पहुँचते सड़ गया पोहा उसका, भगवान ने छीन के खाया उसका, प्रेम का भेंट था ना वो। जब लौट के आया तो पहचान नहीं पाया अपने पत्नी को वो। बोले तुम कौन हो? अरे स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सुशीला देवी, क्योंकि तो गहने से लथपथ है, भरजरी शालू पहना हुआ है, इतने बड़े महल में दासियाँ खड़ी है हजारों, पूरा धान कोठार भरे हुए हैं धान्य के, हाँ सब सोने चांदी के सब फर्नीचर लगा हुआ है, तो ये कहाँ ले जा रही हो? ये तो हमारा ही घर है। बोलते अरे झोपड़ी कहाँ गई? झोपड़ी गायब हो गई अभी, क्योंकि भगवान ने मालामाल कर दिया उसको, एक मुट्ठी पोहे से धनवान बना दिया। फिर भी वो सुदामा उस प्रॉपर्टी के अंदर कभी लालायित नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ छोड़ दिया भक्ति वक्ति, अभी अच्छा मजा कर लो, फर्स्ट क्लास महल में जाओ आनंद लो, दास दासियाँ बैठी हुई सब खाओ अच्छा माल, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उसके बाद भी वो कभी भी उस प्रॉपर्टी से आसक्त नहीं हुए, उतनी भक्ति करते रहे जो पहले करते थे, खाली हाथ पाँव का अपना कम हो गया क्योंकि भोजन करने लगे अच्छी तरह से, लेकिन भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं छोड़ा उन्होंने। हमको देखना यही है जीवन में, अमीर रहे गरीब रहे हम लोग, प्रभु हमारा प्रमोशन हो जाए नहीं हो जाए, कभी भी भगवान का चरण कमल नहीं छोड़ना चाहिए, उनका भक्ति, उनका नामस्मरण, उनकी सेवा, उनका समर्पण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसी में हमारी हमारा हित है, उसमें हमारा कल्याण है। और ऐसे ही भक्तों को भगवान उठाते हैं और अपनी गोद में रखते हैं। हाँ, बाकी लोग बोलते हैं जाओ किनारे में खड़े रहो, समुद्र में आना नहीं, यहीं से मैसेज दूंगा, दर्शन भी नहीं दूंगा। देवताओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो भगवान के भक्त हैं, सब गुणों संपन्न है, धनवान है, ऐश्वर्य संपन्न है, वीर भी हैं, ऐसे लोगों को भी दर्शन देते नहीं वो। और सुदामा जैसे गरीब सो कॉल्ड तथाकथित जो भिखारी व्यक्ति है, उसके लिए द्वारका के सिंहासन में बैठे हुए भाग 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 के आते हैं गेट तक द्वारका के, सब देख रहे हैं, अरे क्या हो गया द्वारकाधीश को, आज इतने पागलों की तरह भाग रहे हैं, क्या बात है। क्योंकि गेट पर खड़े हैं सुदामा जी, बोल रहे हैं कि हमको कृष्ण से मिलना है। और कौन कृष्ण? बोले द्वारकाधीश कृष्ण। तो देखते हैं उसको, अरे पागल तो नहीं आदमी, हाँ इतना फटीचर आदमी है, जानते हैं किसका नाम ले रहे हो तुम? हाँ मेरे मित्र है बचपन के। अरे हटो यहाँ से। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई कृष्ण को गेट से, वो कृष्ण के कान पे गिरी। तो रुक्मिणी के संग बैठे हुए हैं दरबार में, झट से उठते और भागने लगते हैं। सब मंत्रीगण देखते हैं, उद्धव जी बैठे, सब बैठे, सात्यकी प्रद्युम्न सब बैठे हुए हैं। बोले क्या हो गया द्वारका जी भगवान को, भाग रहे हैं पागलों की तरह। और भाग भाग के स्वयं नंगे पैर भाग 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 के दूर तक पहुँचते, अपने गेट के सामने आते हैं और अपने मित्र को गले लगा देते हैं, जो धूल से पसीने से और गरीब फटे हुए कपड़े पहने ऐसे आदमी को गले लगा देते हैं। तो द्वारपाल जब हैरान हो जाता है, अरे कौन व्यक्ति है, बड़े सम्मान से कंधे पर हाथ रखते हुए प्रेम से बातें करते हुए उसको ले जाते हैं और दरबार में लेके जाते हैं सीधे। द्वारपाल तो हैरान हो ही गया, सब लोग हैरान हो गए। दरबार में जाकर अपने द्वारकाधीश राजा के सिंहासन पर उसको बिठाते हैं, यहां भी रुकते नहीं है, उसके आगे बोलते हैं रुक्मिणी जाओ जल ले आओ। और जल लेके आते रुक्मिणी और उसके पैर धोते हैं, बोले तुम पंखा करो। हाँ, अपनी पटरानी को बोल रहे हैं, इसको 16108 रानियां हैं, उन्होंने 16108 रानियों को एक एक महल दिया है। वो अपनी पटरानी जो है सबसे प्रमुख रानी को बोल रहे हैं, हाँ उसके उसको पंखा करो। गरीब आदमी को पंखा कर रहे हैं, भगवान पैर धो रहे हैं, फिर उसकी आरती उतार रहे हैं, उसकी पूरी आरती उतारी उन्होंने। और फिर उसको फल वल खिलाया, उसको भोजन कराया, फिर पूछा कैसे आना हुआ, फिर बचपन की बातें की, वो कई यादें की याद किया उनको, कई अच्छे अच्छे घटनाओं को याद किया, हाथ से मजाक किया, सब कुछ जाज दरबार से सीएल ले लिया उन्होंने। उस दिन दरबार बंद कर दिया, बोला अभी मेरा दोस्त आया हुआ है, आज काम बंद, कल मिलो। हाँ, कितना सम्मान किया उसका, कितना प्रेम करते हैं वो। बाकी सबको अपनी कुर्सी में बिठाते हैं और आदेश देते हैं, ये काम करो वो काम करो, सब लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पर खड़े, इस गले नहीं मिलाते वो, लेकिन सुदामा गले लगाया उन्होंने, बड़े सम्मान से उनको भेज दिया और माला माल कर दिया, लेकिन उस माला माल से वो प्रभावित नहीं हुए। ये प्रेम का रिश्ता है, जब भगवान किस पर प्रेम करते हैं ना तो उसका कल्याण करते थे, हमको वो प्रेम करने को सीखना चाहिए। और वही प्रेम जो है हमको इस दुनिया के भयंकर संकट से बचाएगा। आज आपको लगेगा कि हम अच्छे हैं, कल भूकंप होगा तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हाँ और कोई बाढ़ आएगी बम्बई में बारिश में, कभी भी आ सकती है, ऑलरेडी अलर्ट दे चुके हैं वो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी होने पर भी जो भगवान के चरणों में समर्पित है वो निर्भय रहता है, उसको कोई डर नहीं रहता है। और अगर आपको इस भय से भरे हुए दुनिया में पदम पदम यद विपदम नतेशाम, इस दुनिया में हर कदम पर विपदा है, संकट है, कष्ट है, इस दुनिया में आपको रहना है और संतुष्ट रहना है तो उनके चरणों का आश्रय आपको ग्रहण करना है। अगर वो ग्रहण करेंगे तो दुनिया में कुछ भी हो जाए आपके साथ में या किसी के और के साथ में, आप हमेशा संतुष्ट और आनंदी रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलि महाराज की, वामनदे भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर।